अन्वय ने बेबसी में अपनी आंखें बंद कर लीं और अपने माथे को उसके माथे से टिका लिया। इसके साथ ही उनका पूर्व जन दोनों के दिमाग में किसी कहानी की तरह घूमने लगा। बचपन में दोनों का मिलना, दोस्ती, एक दूसरे से लड़ना झगड़ना, परवाह करना, साथ में स्कूल जाना, बचपन से जवानी तक का सफ़र, जिसे उसने टुकड़ों में आन्या की डायरी में देखा था, सब अब उसकी आंखों के सामने किसी फिल्म की तरह घूम रहा था। उनकी दोस्ती का प्यार में बदलना, मर्यादाओं और समाज की बेड़ियों में बंधे दो दिल जो एक होना चाहते थे पर अपने अपने परिवार की इज्जत के लिए अपने प्यार को अपने दिल में बसाए उसे दोस्ती का नाम देकर अपने रिश्ते को निभा रहे थे। सागर से नाराज होकर सरिता का उस झरने के पास जाना, उसके बाद उसको मनाने के लिए सागर का उसे ढूंढते हुए वहां आना, उसके बाद से वो जगह उनके मिलने की खास जगह बन गई थी। दोनों दुनिया के दायरे से दूर वहां आकर कुछ पल एक दूसरे के साथ बिताते थे, पर कभी अपनी मर्यादा को भंग नहीं किया, निस्वार्थ भाव से अपने प्यार को निभाते रहे। अब अन्वय को समझ आया कि वो जगह उसके लिए इतनी खास क्यों थी, क्यों शुरू से उसको उस जगह से एक अलग ही लगाव महसूस होता था। दिल कितना ही बेचैन क्यों ना हो, वहां जाते ही एकदम शांत क्यों हो जाता था। इसके बाद अन्वय ने उनका अनामिका और शिखर जी से मिलने से लेकर उनकी मृत्यु तक की सारी घटना को एक बार फिर जिया। कैसे शाश्वत ने शिखर जी पर प्रहार किया और सागर के बीच में आने पर कैसे वो घायल होकर जमीन पर जा गिरा। सरिता कैसे तड़प उठी थी उसको उस हाल में देखकर, बिल्कुल वैसे जैसे अभी आन्या तड़प उठी थी उसको जमीन पर गिरता देख। दोनों की आंखों में वही दर्द था, बिल्कुल एक जैसा। उसके बाद कैसे सरिता ने उसके बिना जीने से बेहतर मौत को गले लगाना समझा और अनामिका जी को बचाते हुए खुद को मौत के मुंह में धकेल दिया। कैसे अपनी आखिरी सांसें लेते वक्त वो बेचैन थी, अपनी आखिरी सांस तक उस तक पहुंचने की कोशिश कर रही थी पर पहुंच न सकी, उसके हाथ को थाम न सकी, एक आखिरी बार उसका स्पर्श न कर सकी। उसकी आंखों में उससे बिछड़ने की तड़प थी जो आंसुओं में बदल गई थी। कैसे सागर की आंखों के सामने सरिता ने अपने प्राण त्याग दिए थे और वो कुछ नहीं कर सका था उसके लिए, बिल्कुल वैसे जैसे अभी आन्या उसकी बाहों में बेजान सी पड़ी थी और वो कुछ नहीं कर पा रहा था। तब उसको आखिरी बार स्पर्श करने के लिए भी वो तरस गई थी, पर अभी वो उसकी बाहों में थी। दोनों के दिलों में एक दूसरे के लिए बेहद मोहब्बत थी, पर समाज के बनाए नियमों के दायरे ने उन्हें एक नहीं होने दिया। आखिर में दोनों ने अपने अंदर एक दूसरे के लिए बेपनाह मोहब्बत बसाए हुए इस दुनिया से चले गए थे। आखिरी पलों में भी सागर सरिता से अपने दिल की बात नहीं कह सका था और यहाँ अन्वय भी आन्या को नहीं बता सका कि उसकी दीवानगी भी उसी से है। दो बार उसने अपनी मोहब्बत को पाने से पहले खो दिया था और इसका दर्द उसकी आंखों में आंसुओं बनकर उतर आया। बंद आंखों से आंसुओं की कुछ बूंदें निकलकर आन्या के गालों पर लुढ़क गईं। सिर्फ अन्वय ने ही नहीं, आन्या ने भी सागर और सरिता की प्रेम कहानी जो उसने अपने सपनों में अधूरी अधूरी सी देखी थी, आज उसने उसको जिया था। पर वो इस बात से अनजान था कि जिनकी कहानी अधूरी रहने पर वो इतना दुखी हुई थी, उन्होंने अपनी प्रेम कहानी को पूरा करने के लिए फिर से जन्म लिया था, पर इस बार भी शायद उनकी प्रेम कहानी अधूरी रहने वाली थी। आन्या इस बात से अनजान थी कि अपने पिछले जन्म में वो अपनी आखिरी सांसें लेते वक्त जिसको एक बार छूने के लिए तड़प रही थी, इस जन्म में वो उसकी बाहों में अपनी अंतिम सांस ले रही थी। जैसे ही अन्वय के आंसू उसके गालों पर गिरे, उसकी पलकें हल्के से हिली। उसके बेजान शरीर में कंपन महसूस करते हुए अन्वय ने झट से अपनी आंखें खोल दी। निगाहें आन्या के चेहरे पर जा टिकी। उसकी पलकें हल्के से हिल रही थी, चेहरे के भाव भी बदल रहे थे। अब वो बेहद गुस्से में लग रही थी। सबकी निगाहें उन्हीं पर टिकी थीं और अन्वय को दर्द में देखकर वे सभी खुश हो रहे थे। अचानक ही आन्या ने अपनी आंखें खोल लीं। उसकी गुस्से भरी नीली निगाहें देखकर एक पल को अन्वय भी हैरान रह गया और एकटक उसको देखने लगा, पर जल्द ही उसको याद आया कि आन्या भी उसकी तरह एक वैम्पायर ही है। ये याद आते ही उसके लबों पर हल्की सी मुस्कान फैल गई, जिसे देखकर बाकी सबकी मुस्कान गायब हो गई। आन्या का जख्म खुद बखुद ही भर गया था। अन्वय ने लगभग आन्या को खो ही दिया था, पर जब उसने उसको वापस ठीक देखा तो उसको खोने का दर्द, तड़प, उसकी बेताबी सब दूर हो गए। दोनों ने एक सेकंड के लिए एक दूसरे की आंखों में अपने अस्तित्व को देखा और इसके साथ उनके आसपास एक नीली रोशनी फैल गई। सबकी आंखें चुंधिया गईं, कोई भी उन्हें देख नहीं सका। वो रोशनी इतनी तेज थी कि उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली। कुछ सेकंड बाद सब पहले जैसा हो गया तो सबने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली और जैसे ही सामने देखा जहां अन्वय और आन्या थे, उनके चेहरे का रंग उड़ गया, आंखें फटी की फटी रह गईं। सामने काले कपड़ों में आन्या खड़ी थी, गहरी नीली गुस्से भरी आंखें, सुनहरे बाल जो पोनीटेल में बंधे थे वे हवा से इधर उधर लहरा रहे थे, गुस्से से भींचे हुए लब और कसी हुई मुठ्ठियां। इस वक्त आन्या एकदम अलग आन्या लग रही थी। उसने एक हाथ से अन्वय के हाथ को थामा हुआ था, जो खुद अब अपने वैम्पायर के रूप में उन सब के सामने खड़ा था और अपनी गुस्से से नीली आंखों से उन्हें ही घूर रहा था। सबके सब दंग थे ये नज़ारा देखकर।
वो कुछ समझ पाते उससे पहले ही अन्वय के साथियों ने वहां हमला कर दिया। दोनों पक्ष के वैम्पायर्स की मुठभेड़ शुरू हो चुकी थी और आनिया गुस्से में विक्रांत की तरफ बढ़ रही थी। वहीं अन्वय शाश्वत के पास पहुंच गया था। देखते देखते वहां का नजारा बदल गया। दिल दहला देने वाला दृश्य सबके सामने था। मौत का तांडव हो रहा था। भयावह दिल दहला देने वाली दर्दनाक चीखें जंगल में गूंज उठी थीं।